समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज की शुरुआत मैं कुछ सुंदर पंक्तियों से कर रहा हूँ जिसे हमें जामनगर से हेमल जी ने भेजा है। और मैं हमेशा कहता हूँ मित्रों की कुछ सुंदर सुंदर बातें, सुंदर पंक्तियां आप हम तक अवश्य प्रेषित करते रहा कीजिए, क्योंकि ये आपका मंच है, हमारा परिवार है। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ भी और हमारे सभी दर्शकों के साथ भी, अवश्य हम तक भेजा कीजिए। तो हेमल जी की पंक्तियां मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये कहती हैं, मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगाकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। हाथों को कुछ काम देकर देखिए, चहुं ओर उजियारा पसर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ना जीवन की। ये छोटी छोटी पंक्तियां सचमुच बहुत काम की होती हैं। यदि इन्हें हम अपने आचरण में ले आए तो जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है और आसपास का माहौल भी खुशी से परिपूर्ण हो जाता है। आज सुंदर बात के साथ, सुंदर पंक्तियों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया
भ्राता जी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं कई बार, लेकिन सचमुच जीवन के लिए बहुत कारगर और उपयोगी होती हैं।
कारगर क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इन पांच बातों में इसने पूरे जीवन जीने का सुख कैसे मिले वो स्पष्ट कर दिया। कितनी सुंदर फिलोसोफी है छोटी सी पंक्तियों में। हम लास्ट से ले लें, इच्छाएं मनुष्य को नचाती हैं
जी।
और वो कहीं परेशान होता है, कुछ पाने के लिए भाग दौड़ करता है, खुशनुमा जीवन उसका हो नहीं पाता। तो हमने भी अपने यहाँ एक स्लोगन रखा हुआ है, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। इच्छाएं मनुष्य के दुखों का भी कारण है। इच्छाएं कम कर दो, खुशियों में जीवन झूमने लगेगा। लेकिन आजकल साधनों की भाग दौड़ और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि घर भरा हुआ होते हुए भी मनुष्य
सब लगता है
ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इसलिए खुशी नष्ट हो जाती है। रही यही बात जीव की, सचमुच बोल के मनुष्य बहुत परेशानियां पैदा कर लेता है, कहीं अपने लिए भी, कहीं दूसरों के लिए भी। मुझे बहुत अच्छी बात लगी दांतों को आराम देने की।
स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
सारा दिन मनुष्य खाता ही रहता है ना, कई बार तो मुंह चलता ही रहता है, तो उन्हें तो बीमार होना ही है बेचारे। लीवर को, आंतों को रेस्ट मिलता ही नहीं, तो आखिर वो भी तो थक जाएंगे ना। लंबा काल, सालों साल से चलते ही आ रहे। कोई भी फैक्ट्री हो, लोग उसे बंद करते ही हैं, मशीन को ठंडा करना ही पड़ता है। अभी हम इसको लगातार चलाते जा रहे हैं तो ये तो उचित नहीं है। तो सचमुच ये बहुत सुंदर बातें हैं और इनको अपनाने से हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। और जो जीवन में अननेसेसरी चीजें, हम ऐसा कहते हैं जैसे हमने इनवाइट कर ली हैं, उनको भी हम समाप्त कर सकते हैं।
प्रताप जी, कई बार आप कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आज वो आचरण में जब लाने की बात होती है तो हम असफल हो जाते हैं, या लगता है कि नहीं, ये चीजें आज के दौर में नहीं आ सकती। ऐसा क्यों है और कैसे ये सारी बातें सहज रूप से जीवन में आ जाएं?
ये क्वेश्चन सचमुच ही बहुत सुंदर है। देखिए, मैं मुझे महाभारत पढ़ने का बड़ा शौक होता है। उसमें भी श्री कृष्ण के द्वारा जो शिक्षाएं हैं सुंदर, धर्म की जो व्याख्या है, कर्म की व्याख्या, मनुष्य के कर्तव्यों की व्याख्या, हिंसा अहिंसा, मान अपमान, इन सब की जो व्याख्याएं हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगती हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, फिर भी मनुष्य अपना नहीं पाता है। और इसका केवल एक ही कारण है, केवल एक शक्ति मनुष्य के मन में रहती है और विवेक रहता है उसकी बुद्धि में। अब अपनी बुद्धि में हरेक ने विवेक भी अलग अलग ढंग से भरा है। जैसे क्रोध के लिए एक बात भर ली है, क्रोध के बिना तो काम चलेगा नहीं
जी,
लोग सुनेंगे नहीं, मेरी मानी नहीं जाएगी, काम सारा बिगड़ जाएगा। और दूसरी ओर अब ये विवेक आ रहा है कि नहीं, क्रोध तो विनाशकारक है, ये बुद्धि को नष्ट करता है। अभी पूर्व के विवेक और वर्तमान के विवेक में टकराव हो रहा है। जिसकी विजय हो जाए वो आगे बढ़ जाता है। तो मनुष्य को राजयोग के बल से अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहिए और बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ और डिवाइन ताकि सद्विवेक उसमें कायम रह सके, उसमें संघर्ष की स्थिति ना हो, उसमें एक ही चीज हो कि विवेक तो यही है, क्योंकि सत्य हमेशा एक ही होता है। तो मन जब शक्तिशाली बन जाएगा तो दोनों बातें होंगी, जो चीजें हम नहीं करना चाहते नहीं करेंगे, जो करना चाहते हैं वो करने की ताकत आएगी, जो कुछ छोड़ना चाहते हैं आराम से छूटेगा, जो अपनाना चाहते हैं सहज भाव से अपना सकेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं, संसार के हर धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्म की जो होली बुक्स हैं, उनमें मनुष्य के लिए सुंदर बातें लिखी हैं। सबके साथ प्रेम होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए, श्रेष्ठ चरित्र होना चाहिए, क्रोध और अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, ये सब बातें सबके पास हैं, लेकिन कर सब वही रहे हैं जो इनके विपरीत है।
जी, जी, जी।
तो राजयोग में यही फायदा होता है कि हम परम सत्ता से जुड़ते हैं, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, हम श्रेष्ठ बातों को अपनाने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे अंदर बहुत सारी जो अच्छाइयां हैं जो हमने दबा दी हैं, श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा वो जागृत होने लगती हैं। जैसे तुम आत्मा हो और तुम तो पवित्र हो, तुम तो देव कुल के हो, तो संपूर्ण देवत्व तुम्हारे अंदर है, तुम बहुत रॉयल कुल के हो, इसलिए तुम्हारे कर्म बहुत रॉयल होने चाहिए। ये सब सुनने से हमारी सोई हुई चेतना जगती है और वो जो सब श्रेष्ठ धारणाएं हैं वो जीवन में आने लगती हैं।
मतलब राजयोग एक बहुत ही जरूरी आवश्यक चीज है जिसके माध्यम से ये चीजें आ सकती हैं जीवन में। और आपने श्रेष्ठ विवेक की भी बात कही व्रता जी, सचमुच बहुत ही गहरी बात है। जिस ढंग की हमने अपनी मान्यता बना रखी है उसी आधार पे हमारा जीवन और व्यवहार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात व्रता जी, आजकल लोग ये सोचने लगे हैं कि ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, कहने में बहुत अच्छी लगती है, अच्छा चलो यदि मैंने इसे अपने जीवन में ले भी आया, मान लीजिए ये चीजें आ गईं, लेकिन मुझ एक व्यक्ति की ये सारी चीजें करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, पूरी दुनिया ही ऐसी है, सिस्टम ही ऐसा है, तो मैं यदि ऐसा बन भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा।
हाँ देखिए, ये बात तो एक मनुष्य रोज सोच सकता है कि रात को अंधेरा है, मैंने अपने घर में बल्ब जला भी लिया तो ये अंधेरा थोड़ा ही मिट जाएगा, लेकिन हमारे घर का अंधेरा तो मिट जाएगा, हम तो वो कार्य कर सकेंगे जो हमें करना है। अब कलयुग में चार ओर अंधकार ही अंधकार है, तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने अंदर का दीपक तो जला ही लेना चाहिए, मैं स्वयं को चेंज करूंगा तो मेरा जीवन तो कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा ना, मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, मुझे वो चीजें सताएंगी नहीं जो आजकल संसार को सता रही है। देखिये, मैं मुझे एक घटना याद आ रही, मेरे एक बहन मुझसे मिलने आई अभी एक दो दिन पहले ही, जैसे मेरे से बात करने लगी आंखें भर आई, मैंने कहा क्यों, तो कहा मैं किससे बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। अब मैं समझ गया ये सेंसिटिव हो चुकी है, तो मैं जानता हूँ कि आजकल के युवक सेंसिटिव क्यों होते हैं, तो मैंने उसे पूछा तुम्हारा कहीं किसी से प्यार फेल हो गया क्या, हंसने लगी, कहा यही तो हुआ है, आपको कैसे पता चल गया। मैंने कहा आपने जो बताई ना रात को मुझे डर लगता है, वो बता रही थी मुझे नींद ठीक नहीं आती, ये आंसू आते हैं, ये इसी चीज का प्रूफ है। तो देखिए, मैं देख रहा था कि उसने अपने को इतना निर्बल कर लिया था कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, हालांकि उसे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम देना है, MBA भी उसने कर लिया था, लेकिन एक चीज के फेल हो जाने से उसके इमोशंस इतने डेड हो चुके थे कि उसका इफेक्ट उसके पूरे जीवन पर पड़ रहा था। अब इस केस को ले लीजिए, यदि ये अपने को स्ट्रोंग बना ले तो इसका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। मैंने बताया उसको कुछ बातें, तुम्हें स्ट्रोंग बनना है, ये कोई बड़ी चीज थोड़ा ही है, तो आजकल कॉमन बात हो गई है, युवक युवतियों में प्यार होता है, ब्रेक होता है, इसको तुम सीरियसली क्यों ले रही हो। तब उसमें थोड़ी जागृति आई, यहाँ बात तो ठीक है, मुझे और भी तो बहुत कुछ काम करने हैं। इसी कारण वे 3 मास से वो ज्ञान योग के मार्ग पे चलने लगी। मैंने कहा था देखो पॉजिटिवली सोचो, ये हुआ तो तुम भगवान के पास आ गई ना, कहा ये तो अच्छी बात है। इसलिए हमेशा सोचो जीवन में जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है, इसलिए हमें अपने घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए, कम से कम हमारा अंधकार तो मिटेगा और देखिए फिर हमारा प्रकाश पड़ोसियों तक भी फैलता है, फिर और दूर तक फैलेगा। एक व्यक्ति बदलेगा तो 10 बदलते हैं, 10 बदलने से 100 बदलते हैं, और इस तरह कलम लगती जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं, ये कलयुग का अंत है। ये भी सत्य है कि इसमें सब विकार और व्यसन अपने प्रकोप में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे मुक्त हैं, और उनमें से हमें एक हो जाना चाहिए, हम ये सोचकर अपने जीवन को परिवर्तित करें।
बिल्कुल, मतलब पान का बीड़ा मैं खुद उठा लूं, दूसरों की ओर ना देखूं। और ये बात भी कही जाती है कि दीप से दीप ही हमें जलाते चलना है, तो शायद मैं जल जाऊं, प्रज्वलित हो जाऊं, तो दूसरे दीप भी प्रज्वलित होना शुरू हो जाएंगे। अन्यथा लगता है कि कहीं कोई आशा की किरण दिख ही नहीं रही है, तो ठीक है, जिस ढर्रे में हम चल रहे हैं वही ढर्रा ठीक है, ये मान के भी बहुत सारे लोग चलते रहते हैं। चलिए बेहता जी, आशा के दीप जलाने के साथ हमारे पास जो पहला मेल है उसकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये कहती हैं कि ओम शांति भ्रता जी, मेरी बेटी को किसी दूसरी कास्ट के लड़के से शादी करनी है, लेकिन मेरे परिवार वाले और मैं बेटी को समझा रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो भी वो जिद करती है और बोलती है कि अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो मैं खुद ही कर लूंगी शादी उस लड़के से। प्लीज भाई जी, आप हमें बताएं कि मैं उसको कैसे समझाऊं, आखिर समाज में इज्जत का भी सवाल होता है। मेरे पति और बेटे दिन रात लड़ते हैं इसी बात को लेकर, लेकिन बेटी ने जिद ठान ली है कि शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। कृपया कोई समाधान बताएं।
ये समस्या तो रोज आ रही है, अभी भी यहाँ आ रहा था स्टूडियो, तो ये ऐसा ठीक ऐसा ही एक फोन आया कि लड़की बिल्कुल नहीं मान रही, इंजीनियरिंग कराने के लिए भेजा था, 2 ईयर करके ही कह दिया अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे तो इससे शादी करनी है। अब बेचारे माँ बाप तो नेचुरल परेशान होते हैं, कहा लड़का अच्छा नहीं है, उनका घर अच्छा नहीं, लेकिन प्यार तो मनुष्य को अंधा बना देता है ना। ये इस कलयुगी प्यार की ये पहचान है कि उसमें उसको कुछ भी प्रकाश दिखाई नहीं देता, अंधकार में एकदम मनुष्य चला जाता है, और ये ऐसे गलत निर्णय लेते हैं। और जैसा कि रोज केस आते हैं, 1-2 साल शादी चलती है, फिर डिवोर्स देकर अलग अलग हो जाते हैं और जीवन दुर्गति में आ जाता है। तो माँ बाप तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और लड़का और बाप भी इसी पे लड़ते होंगे दोनों, भाई बुरी बात है ना, ये समाज की बात भी है, सम्मान की बात भी है। कई लोग बड़े रॉयल और सम्मानित परिवार वाले होते हैं, लड़की किसी के साथ भी चल देती है तो बड़ी बेइज्जती का प्रश्न।
और ये तो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं बेटा जी, यदि आप लोग नहीं कराएंगे तो मैं खुद ही उससे शादी करूंगा।
बिल्कुल, आजकल तो लड़कियां बड़ी बोल्ड हैं, अच्छे कार्यों के लिए नहीं, शादी करने के लिए और फिर परेशान रहने के लिए। इससे तो इनको बचना चाहिए। मैं सभी युवकों को पहले तो इस बात से एक संदेश देना चाहता हूँ कि लव मैरिजेज आजकल सर्वे भी हो चुका है, 90% फेल हो रही हैं। कोई सोचे जो 10% सफल हो रही है उसमें हम भी होंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्यार में मनुष्य कुछ भी देखता नहीं, वर कैसा, उसके संस्कार कैसे, फिर वो मारपीट करता है लड़की को, लड़की का कई जगह तो ऐसा हुआ हफ्ते में ही दुर्गति हो गई, 15 दिन में ही डिवोर्स देना पड़ा, और बस क्या कहें कि कुछ शब्द ही नहीं, जीवन एकदम अंधकार में दुखों में भर गया। माँ बाप ने भी कह दिया अब हमारे पास तुम ना आना, जहाँ जाना हो जाना, अब देखो संसार में वो अकेली हो गई, परिवार भी साथ नहीं रहा। इसलिए मैं सब युवकों को कहूंगा जरा संभलो, अपने प्रेम को भी जरा कंट्रोल में करो, माँ बाप की दुआएं लेकर आप मैरिज करेंगे तो वो मैरिज सफल भी होंगी। मैं इनको कहूंगा सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करें 7 दिन तक, स्वमान की प्रैक्टिस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, और बहुत अच्छा योग अभ्यास करें 7 दिन, और साथ में अपनी लड़की को भी आत्मा देखकर ये संकल्प दें कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये समझदार है, ये हमारे कुल का दीपक है, ये हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम अवश्य रोशन करेगी। ऐसे संकल्प देके फिर उससे बात करनी है आत्मा देकर, और बहुत प्यार से, उल्टी बात नहीं करेंगे। देखिए मनुष्य क्या उल्टी बात करता है, उसे शादी नहीं करनी है, हम नहीं करने देंगे, इससे उसका ईगो बढ़ जाता है। बहुत प्यार से बात करनी है, हम तुम्हारी अच्छी जगह शादी कराएंगे, लड़का कैसा होगा तुम्हें क्या पता, कल न चले बात, तुम हम पे विश्वास रखो, सबसे ज्यादा शुभ चिंतक तो हम हैं तुम्हारे, एक ये बात। दूसरा एक प्रयोग हम सिखाया करते हैं, इन्हीं 7 दिन तक वो एक दूसरा प्रयोग करें, जब वो सोई हो सवेरे उसे 10 मिनट तक योग के वाइब्रेशंस दें। इसकी विधि सब जानते हैं, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, उसको कुछ संकल्प दें, ठीक ऐसे ही तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो, हमें तुम्हारे भविष्य की बहुत चिंता है, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो, उज्जवल हो, तुम श्रेष्ठ भाग्य को लेकर जन्मी हो, तुम बहुत अच्छी हो, अब उस लड़के से बुद्धि हटा दो, हम तुम्हारी अच्छी जगह मैरिज कराएंगे, रोज ये संकल्प देंगे, सेम टाइम 5 बजे तो 5 बजे 7 दिन तक, और फिर 7 दिन के बाद उससे बात करनी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके विचार अवश्य बदल जाएंगे और वो इस जंजाल से मुक्त हो जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रति जी, क्या कुछ ऐसे अनुभव हैं जिसमें कि ऐसा हुआ है कि हाँ, लड़की हो या लड़का हो, अब उनका बुद्धि योग कहीं लग गया हो, इस प्रकार से पेरेंट्स ने प्रैक्टिस की हो और उनकी बुद्धि ठीक हो गई हो?
नहीं, हुए हैं, 2-4 केस ऐसे हैं मुझे उनका, क्योंकि मैं उनका वो नहीं पूछता कहाँ से बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि लोगों की प्राइवेट जैसी बात होती है ना,
जी,
तो
जी,
उनको
जी.
बताने में हिचक होती है, तो हम पूछते भी नहीं है, हमारा तो लक्ष्य होता है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, तो कई लोग फोन बैक करते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया है।
जी जी,
होगा इससे, क्योंकि ये मानसिक रूप से ही तो वो उससे जुड़ी है ना, और मानसिक रूप से ही अच्छे विचार यदि उसको मिल जाते हैं तो वो वहाँ से हट जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप जी, चलिए, एक बात तो रही कि माँ की, और दूसरी बात है बेटी की। एक बार शायद मैंने आपसे बात की भी थी, अब ये कहती है, ये इन्होंने किया है हमें मेल, और ये कहती है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन अब मेरा भी प्यार एक ऐसे व्यक्ति से है जो हमारी ब्राह्मण फैमिली से नहीं है, और मैं वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं मानती हूँ, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और मुझे लगता है कि मेरा जीवन उसके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब ये बात मैंने अपने माता पिता से की तो मेरे माता पिता बहुत हर्ट हुए और उनके स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव आ रहा है, वो किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं उसके साथ शादी करूं, जीवन बिताऊं, वो कहते हैं कि तुम उसे छोड़ो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो उसे हटती नहीं है पूरी तरह से, और मैं ये चाहती हूं कि वो भी मेरे साथ रहे, साथ ही मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहें, और चूंकि ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए अब मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होने लगी हूं, अनस्टेबल होने लगी हूं, कृपया कोई रास्ता बताएं। तो ये एक लड़की ने अपनी तरफ से ये मेल भेजा।
देखिए, ये काम वासना की अति का रिजल्ट है ना, माँ बाप भी मर रहे हैं बेचारे, क्योंकि ऐसे में हार्ट अटैक होते देखे गए हैं, फादर विशेष रूप से, माँ तो कहीं ना कहीं झेल लेती है, लेकिन बाप जो समाज में रहता है, जिसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, यही स्थिति इनकी बनती जा रही है, दोनों बीमार हो गए हैं, इस पर भी मानसिक इफेक्ट आ रहा, देखो तीनों गिरावट की ओर जा रहे हैं, तो भला ऐसी मैरिज करके ये क्या करेगी? ठीक है, इसका उससे प्यार है, किसी ना किसी का किससे हो जाता है, ये भी सत्य है, लेकिन जहां जिस कार्य की शुरुआत ही अकल्याणकारी हो गई हो, उसमें कभी भी आगे चलकर कल्याण नहीं होगा, ये कर्म का सिद्धांत है, इसलिए इसको मैं तो ये कहूंगा कुछ समय के लिए इसे ही पोस्टपोन कर देना चाहिए, माँ बाप को अच्छा अभी मैं छोड़ देती हूँ, आगे विचार करेंगे, तो एक बार स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, ये सभी को जान लेना चाहिए, कर्म प्रारंभ करने से पहले यदि सब कुछ बिगड़ रहा है तो सारे कर्म पर पूरा जीवन उसका इफेक्ट आएगा, इसलिए वो कभी भी कल्याणकारी नहीं होगा, इनको ऐसा करना चाहिए।
जैसे आपने फतेह जी लड़की के माता पिता के लिए कहा था पहले मेल में कि वो ऐसे योग का अभ्यास करें, कई हमारे पास ऐसे मेल आते हैं जैसे इन्होंने किया है इस ब्राह्मण लड़की ने, तो ये भी चाहते हैं कि हम अपने माता पिता हमारे कन्विंस हो जाएं हमारे इस रिलेशन को लेकर, कई लड़के भी मेल करते हैं या फोन करते हैं कि हमारे रिलेशन के लिए पेरेंट्स रेडी हो जाएं, इसके लिए भी हम कुछ योग का अभ्यास करें क्या, तो इन्हें फिर क्या सजेस्ट करें?
हाँ, देखिए, अगर ये चाहते ही हैं, क्योंकि जाति आती की तो खैर कोई बात नहीं,
जी जी
है, परिवार अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, तो जाति का कोई खास महत्व नहीं, हम लोग उसे महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जीवन पूरा जिसके साथ आपको रहना है अच्छा जीवन बीते, सुख शांति रहे, आपस में प्रेम बना रहे, एक अच्छी हारमोनी बनी रहे, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। और माँ बाप को देखिए, समाज की बात है, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो स्वीकार करते हैं, जहाँ हमारे बच्चे खुश, जहाँ वो सुखी हैं, जाओ भाई कर लो, कोई बात नहीं, वो खुद करा देते हैं, लेकिन ऐसे केस में जहाँ ये डिप्रेशन की ओर जा रहे हों, वहाँ ये काम थोड़ा कठिन होता है। फिर भी अगर ये चाहते हैं और ये योग के मार्ग पर हैं, वैसे मुझे तो नहीं लगता है योग के मार्ग पे होंगे, तो ये एक घंटा योगदान अपने माँ बाप को दें और देखें फिर कितने दिनों में उनकी मनोस्थिति सुधरती। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ समय के लिए ये इस बात को पोस्टपोन करें।
जी जी जी, क्योंकि ऐसी स्थिति में बेहतर जी, जहाँ प्यार वाली बात होती है कि अब मैंने किसी को पसंद कर लिया, अब उनके साथ ही मेरा टोटल जो रिलेशन कनेक्शन सब बना हुआ है, तो यहाँ पे दूसरी जगह शादी करना भी वो सफल नहीं होता है ऐसा देखा गया है। क्योंकि मेरा मन कहीं और है, कहीं जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर दी गई, तो वो भी सफल नहीं होता। और वहां पे भी फिर ये जो त्रिकोण बन जाता है कि मेरी बुद्धि कहीं पे है और मेरा संबंध कहीं पे है, तो ये भी कल्याणकारी तो नहीं होता।
बिल्कुल होता तो ऐसे ही, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता कुछ और रही है ना पहले से ही
जी।
तो लड़की की शादी माँ बाप ही कराते रहे हैं। अभी यहाँ एक समाज में ऐसी व्यवस्था चली आ रही है, उसको तोड़ने से लोगों को सामाजिक भय, समाज में होने वाली ग्लानी, इसका बहुत डर सताता है, लोग क्या कहेंगे। और बच्चों पर भी कहीं कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। मान लो लड़की ने किसी से प्यार करके शादी कर ली, लड़का भी वही कर लेता है, मैं भी अपनी मर्जी से करूंगा, क्या है इसका इफेक्ट समाज पर बहुत बुरा आता है। और ये वेस्टर्न कल्चर का बढ़ता हुआ प्रभाव है। अब से 20 साल पहले लोग सावधान किया करते थे कि भारत में वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ रहा है, सावधान रहे सब, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से घुल मिल गया है वही प्रभाव। अब उसको वेस्टर्न कल्चर भी क्या कहें, वो तो इंडियन कल्चर बन गई है। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस कल्चर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मैं भी ये जानता हूँ कि ये कल्चर किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि ये लव मैरिज आगे चल के डिवोर्स में बदलती ही है। इसलिए थोड़ा सा समझदार सबको होना ही चाहिए। माँ बाप अगर देखें कि ठीक है, देख लें दोनों परिवारों को, और अगर अच्छे परिवार हैं तो मैरिज अपनी इच्छा से बच्चों को दुआएं देते हुए करा देनी चाहिए। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि मैरिज से पहले हम अपने माँ बाप को कन्विंस करें, उनकी दुआएं लें, तो हमारा सारा जीवन बहुत सफल होगा।
कई बच्चे ऐसा सोचते हैं बेटा जी कि चलो हम अभी कर लेते हैं, पेरेंट्स तो बाद में मान जाएंगे, पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, वैसे भी क्षमाशील होते हैं, तो हम भले अभी कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ जिसके साथ मुझे जीना है उसके साथ तो मेरा अच्छे से वो ताना बाना बनना चाहिए ना। तो वो सोचते हैं कि जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, जहां मुझे अभी ठीक लग रहा है, मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, बाद में अपने पेरेंट्स को मना लेंगे, भले अभी उनका आशीर्वाद ना मिल रहा हो। फिल्मों में बहुत ज्यादा ऐसा होता है और फिल्मों का प्रभाव तो बच्चों पर बहुत ज्यादा ऐसा है, तो यहाँ क्या सजेस्ट करें?
देखिए, मैं तो इससे पहले ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जो ये आयु है ना युवकों की
जी,
18 साल, 20 साल, 22 साल, इसमें युवक बहुत मैच्योर नहीं है जो वो अपने जीवन साथी को ठीक से चुन सकें। उनका तो केवल प्यार होता है। इसलिए अगर युवक सोचते हैं इनके साथ हम जीवन सुखी सुख भरा जिएंगे, ये उनकी मान्यता गलत होती। इसी के लिए माँ बाप के सपोर्ट की उन्हें जरूरत होती है कि कल कुछ भी होता है तो माँ बाप उन्हें संभाल सके। लेकिन फिर भी यदि बच्चे मैच्योर हैं और वो अच्छी तरह देख चुके हैं और वो ऐसा करना चाहते हैं, तो देखो इसको करने से कोई रोक भी तो नहीं सकता। अगर वो समझते हैं, वो माँ बाप को बाद में कन्विंस कर लेंगे, तो सो बेटर।
जी 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 जी, तो फिर इसके लिए उनको इजाजत दे देनी चाहिए जहाँ पे वो सुखी रहें। बाद में कई बार ऐसा कहते हैं कि गिर पड़ के भी व्यक्ति कई बार संभल जाता है, तो शायद यदि शुभ भावना शुभकामना तो पेरेंट्स की रहती है कि उनका जीवन अच्छा हो, लेकिन कई बार इस प्रकार के अनुभव भी उन्हें संभलने में वो करते मदद करते हैं। एक चीज रहता जी, जो बात हमेशा से कही जाती रही है कि जब किसी से प्यार हो जाता है या मेरी दिल किसी पे आ गई, तो वहां से हटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है? मतलब ये इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? मुझे किसी से प्यार क्यों हो जाता है? उन भीड़ में से कोई एक व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, उसके साथ पूरा जीवन जीना चाहता हूँ।
इसके पीछे बड़ी कॉन्शियसनेस है एक्चुअली। और किसी ने किसी को मदद कर दी, किसी के किसी से कुछ गुण और संस्कार मिल गए, इसलिए वहाँ प्यार हो जाता है। बाकी आजकल तो ऐसा भी देखा जाता है कि बिना मतलब भी किसी से प्यार हो जाता है। तो इसके पीछे कोई बहुत सूक्ष्म सिद्धांत तो नहीं है कि पूर्व जन्मों का उनका कुछ संबंध रहा हो, थोड़ा बहुत वो काम कर सकता है, लेकिन मूल रूप से इसके पीछे बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है।
बिल्कुल। और एक चीज आजकल बहुत सुनने में आ रही है ब्रता जी, हॉरर किलिंग की, जब ये देखते हैं पेरेंट्स, मान लीजिए जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, अब पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, जो समाज में इज्जत की बात जो हम कर रहे हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा ऐसा करे, हमारी बिरादरी से बाहर जाकर के शादी करे, गोत्र व्यवस्था हमारे यहाँ है, गोत्र का मिलान भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, तो यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, निकल पड़ते हैं, तो हॉरर किलिंग वाली बात देखने में आ रही है, यहाँ आप क्या कहेंगे?
देखिए ये सब चीजें तो हैं जो पहले से चली आ रही हैं, इससे आने वाली जो संतान है वो बहुत योग्य और बहुत चरित्रवान पैदा नहीं होती है, उसका इफेक्ट उन पर जरूर कहीं ना कहीं पड़ता है। और मैं तो देखिए ऐसा देखता हूं कि जहां दो व्यक्तियों ने युवकों ने लव मैरिज की और उनके बच्चे जब बड़े हुए, लड़की जब लव मैरिज की ओर बढ़ती है तो माँ उसे बहुत रोक टोक करती है कि तुम्हें नहीं करना है, हमारे समाज की इज्जत का प्रश्न है, लेकिन वो खुद इस बात से गुजर के आती है। तो वास्तव में इनका प्रभाव आने वाली संतति पर बहुत ही बुरा पड़ता है। हमारे देश में जो ये एक व्यवस्था बनाई थी ना, गोत्र मिलन, कुंडलिनी मिलन, ये इसीलिए था कि संतान बहुत योग्य और चरित्रवान हो।
मतलब इनका मिलान क्या साइंटिफिक है भैया जी?
होना तो यही चाहिए।
जी जी जी, मतलब ये मिलान हो जाए उसके बाद
करने से
की अच्छा। जाती है
भविष्य संतति के लिए ये बहुत सुंदर रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इन चीजों का भी साइंटिफिक रीजन है, ये ऐसे ही नहीं किया जाता रहा है, विज्ञान जरूर इनके पीछे है। चलिए ब्रता जी, हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारी जो अभी की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार चलें और साथ ही समाज को एक सुंदर समाज बनाएं, इसमें अपना योगदान दें, हमारी कामना रहेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, यदि सचमुच देखा जाए तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा से ही बहुत ही मूल्यवान रहा है जीवन के लिए। हम भगवान से भी कामना करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा, और साथ ही अपने माता पिता जो नेक्स्ट टू गॉड है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनसे बड़ा शुभ चिंतक मुझे तो नहीं लगता कि संसार में कोई और हो सकता है। भगवान है, उनके बाद वो है जो हमारे लिए बहुत शुभ शुभ सोचते हैं, इसीलिए उनका दिल ना दुखाया जाए और उनका आशीर्वाद जरूर लिया जाए। ठीक है, यदि कोई ऐसी बात है, कहीं हम चाहते हैं अपनी इच्छा से शादी करना, जरूर उन्हें विश्वास मिले। यदि वो हर्ट हो रहे हैं तो भी हम बहुत प्यार से, बहुत शालीनता से, सभ्यता से अपनी बात को रखें, और यदि फिर भी वो हमें प्रकाश देना चाहें तो उस पर गहराई से विचार जरूर करें कि ये जो कह रहे हैं मेरे भविष्य को देखते हुए, उसमें मेरा कितना कल्याण है। यदि आप स्वयं बहुत गहराई से, शांत भाव से निर्णय लेंगे तो जीवन आपका प्रकाशित रहेगा, सुखमय रहेगा, आनंदित रहेगा, क्योंकि माता पिता भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही कामना है कि आपका जीवन शांति से और खुशहाली से बीते। कहीं ऐसा ना हो कि बिना आशीर्वाद लिए हम चल तो पड़े लेकिन रास्ते में कांटे ही कांटे और अंधेरे ही अंधेरे मिले, तो हमारा जीवन ही दुखमय हो जाएगा, और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए बहुत गहराई से मित्रों इन प्रश्नों पर जरूर विचार कीजिएगा और अपने जीवन का निर्णय लीजिएगा। और जहां से मैंने शुरुआत की थी, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां आपके पास होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, तो अपने विचारों को जरूर हम तक प्रेषित कीजिएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि मेरे पास एक रुपए का सिक्का है और आपके पास एक रुपए का सिक्का है, मैं आपको एक रुपए देता हूं और आप एक रुपए मुझे देते हैं, तो हम दोनों के पास एक एक रुपए रह जाएगा। लेकिन यदि मेरे पास एक अच्छा विचार है और आपके पास भी एक अच्छा विचार है और हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मैं आपको अपना विचार देता हूं, आप अपना विचार मुझे देते हैं, हम दोनों के पास दो सुंदर विचार हो जाते हैं। इसीलिए आपके पास भी जो अच्छे अच्छे विचार हो, अच्छी अच्छी पंक्तियां हो, बातें हो, जो समाज के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्र के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, समस्याओं के निदान से जुड़ी हुई हैं, हम तक अवश्य प्रेषित कीजिएगा। मैं नाम सहित उन्हें इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करूंगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।